તારીખ 19/5/1996 શ્રી સ્વાનુભૂતિ દર્શન પ્રશ્ન નંબર 11, 12 અને 13 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 10
મુનિરાજ કે વિષય મેં એસા કહા કે વો સ્વરૂપ મેં લીન રહેતે હૈં और छठे सातवें गोस्थान में वो जुड़ते हैं। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि को गृहस्थाश्रम में कार्य तो होता है, कार्य मैंने अपना उदय रूप कार्य तो होता है गृहस्थाश्रम के अनुसार, तो भी अंदर के कार्य, अंदर की धारा, ज्ञाता की धारा चालू ही है, एक साथ दोनों हैं। बाहर में उदय भाव के कार्य होते हैं, अंदर में ज्ञाता, मात्र ज्ञाता ऐसी धारा चालू रहती है, वो भी एक कार्य है। प्रतिक्षण जो यह विभाव की परिणति हो रही है उससे भिन्न परिणति प्रतिक्षण चलती रहती है। क्या कहा कि विभाव परिणाम भी क्षण क्षण पर्यंत चलता है, साथ साथ प्रतिक्षण उस विभाव परिणाम से भिन्न ऐसे आत्म परिणति भी चालू रहती है। वे कहा कुछ अशरण नहीं है, उसको कोई आधार नहीं है, ऐसा नहीं है। अंदर में परमात्म तत्व का, परमात्म स्वरूप का आधार माने अवलंबन लिया हुआ है और अपना कार्य चालू है। जिसने आत्मा का शरण लिया है उसने तो आत्मा में ही सुख शांति स्वानुभूति का कार्य चलता है। आत्मा का शरण लिया है, अवलंबन लिया है, उनको आत्मा की सुख शांति प्राप्त होती है और आत्मा का स्वानुभव का कार्य उसको चालू रहता है। आत्मा की निर्मलता विशेष प्रकट हो गए, वैसे विशेष पुरुषार्थ की डोरी चलती रहती है। आत्मा की निर्मलता तो पुरुषार्थ का फल है। आत्मा में निर्मलता विशेष होवे, अशुद्धि का नाश होवे, शुद्धि बढ़ती जाए, ऐसे ऐसा परिणाम, ऐसा फल विशेष पुरुषार्थ के कारण से चलता रहता है। पुरुषार्थ चलता है इतना नहीं कहा, विशेष पुरुषार्थ चलता है ऐसा कहा। ऐसा विशेष पुरुषार्थ चलता ही रहता है। हाँ, पुरुषार्थ की डोरी हाँ चालू रहती है। वो बात किया सम्यक दृष्टि का। अब सिद्ध परमात्मा की बात करते हैं कि सिद्ध भगवान को सब छूट गया तो फिर सिद्ध भगवान क्या करते होंगे। सम्यक दृष्टि के तो बाहर के कार्य भी दिखते हैं और अंतर दृष्टि होवे तो अंतर का कार्य भी दिखे। उनके भी पंच महाव्रत आदि बाहर के कार्य दिखते हैं और उसके भी अंतर प्रति आत्म कार्य की होती है। अब सिद्ध भगवान को तो सब छूट गया है, उनको तो देह भी नहीं, शरीर भी नहीं, वो तो विदेही परमात्मा है। सिद्ध भगवान को सब छूट गया तो सिद्ध भगवान क्या करते होंगे? कुछ नहीं है उनको तो कोई प्रवृत्ति, शरीर नहीं तो शरीर की प्रवृत्ति भी नहीं है। दिन रात क्या करते होंगे? वहां तो दिन रात नहीं है लेकिन 24 घंटा क्या करते होंगे? तो कहते हैं कि सिद्ध भगवान को अनंत गुण पर्याय है, यह अनंत गुण पर्याय में परिणमन किया करते हैं। सिद्ध भगवान में अनंत गुण है कि नहीं? अनंत गुण परिणमन करते हैं कि नहीं? वो कार्य चालू है, अंदर में अनंत आनंद, अंदर में अनंत आनंद भरे हैं, भरा है, उसका परिणमन चालू है। अनंत ज्ञान भरा है तो केवल ज्ञान चालू है, वो परिणमन किया करते हैं। कर्ता क्रिया कर्म सब अंतर में प्रकट हुआ है, खुद करता है, परिणमन रूप क्रिया है, केवल ज्ञान आदि कार्य है। कर्म माने कार्य, सब अंतर में प्रकट हुआ है और यह सहज है, आकुलता रूप नहीं है, परम निराकुलता है और सहज स्वभाव से सहज परिणमन रूपी कार्य होता है। आत्मा का निवृत्त स्वभाव पूर्ण प्रकट हुआ है, निवृत्त स्वभाव मैंने पर के साथ संबंध वाली प्रवृत्ति को प्रवृत्ति कहते हैं और पर के साथ संबंध वाली प्रवृत्ति का अभाव को निवृत्त कहते हैं। तो स्वभाव तो निवृत्त है, स्वभाव को पर से संबंध नहीं है, वो तो निरालंब निरपेक्ष है, ऐसा ही प्रकट हो गया परिणाम। तो कहते हैं कि आत्मा का निवृत्त स्वभाव पूर्ण प्रकट हुआ है, गुणों का कार्य तो चलता ही रहता है, गुण के जो परिणाम है ज्ञान आनंद आदि के, वो तो कार्य चलता रहता है। ज्ञान ज्ञान का कार्य करता है, आनंद आनंद का कार्य करता है, ज्ञान गुण है वो केवल ज्ञान रूपी कार्य करता है और आनंद गुण परमानंद का कार्य प्रकट करता है, वो चालू ही रहता है। ऐसे अनंत गुण अनंत गुण का कार्य करता है, ज्ञान आनंद जैसे अनंत गुण है वो अपना अपना कार्य करते हैं, तो भी परिणति निवृत्ति में है, तो भी इनकी धारा में किसी पर के साथ प्रवृत्ति वाला कोई कार्य नहीं है, उसको निवृत्ति कहते हैं। परिणमन का अभाव को निवृत्ति नहीं कहते हैं, ज्ञान आनंद आदि अनंत गुणों का परिणमन चालू है लेकिन दूसरे के साथ कोई प्रवृत्ति नहीं है, उसको निवृत्ति कहते हैं। सिद्ध भगवान पूरे दिन आत्मा में लीन रहते हैं, क्या कार्य करते हैं? आत्मा में लीन रहते हैं, परिपूर्ण निरवशेष अंतर्मुख परिणाम है, किंचित मात्र एक अंश रूप भी बाह्य परिणाम बहिर्मुख परिणाम नहीं है, स्वरूप लीनता में डूबे हुए हैं। सिद्ध भगवान कैसे हैं? स्वरूप लीनता में डूबे हुए हैं, अद्भुत और अनुपम दशा में रहते हैं। कैसे है सिद्ध भगवान की दशा? अद्भुत है और किसी से उपमा दे सके ऐसी भी नहीं है, इसलिए अनुपम है। और विचार करने पर उसका पूरा विचार नहीं होता, इसलिए अचिंत्य है, चिंतन में नहीं आती। लेकिन ज्ञान ध्यान में बराबर समझ में आती है। विकल्प वाला चिंतन में वो समझ में नहीं आती कि सिद्ध दशा कैसे होगी। थोड़ी बहुत बता दिया, अनंत आनंद होता है, केवल ज्ञान होता है, फिर भी वो चिंत्य दशा है, चिंतन से पार है, और निर्विकल्प ज्ञान ध्यान में उसका बराबर भाव भाषण हो जाता है कि सिद्ध भगवान ऐसे होते हैं। क्योंकि निर्विकल्प ज्ञान ध्यान का अवलंबन निज सिद्ध पद है, तो ज्ञान में अपना सिद्ध पद आता है, तो सिद्धालय में सिद्ध भगवान कैसे होते हैं उनका स्वरूप भी मालूम पड़ जाता है। अद्भुत और अनुपम दशा में रहते हैं और उसमें संतुष्ट है, फिर असंतुष्टपना वहाँ नहीं है। संतुष्ट है, तृप्ति और आनंद है, पूरी तृप्त तृप्त दशा है, कृत कृत्य दशा है और आनंदमय दशा है, अनंत आनंद प्रकट हुआ है। ऐसे सिद्ध भगवान की बात कर दे, जैसे सिद्ध भगवान को देखते देखते बता रहे हैं हम, वैसी बात क्या है, सम्यक दृष्टि को। कहीं बाहर जाने का मन होता नहीं और कोई कार्य में कर्ता बुद्धि से झूठने का भी मन होता नहीं है, कुतूहल वृत्ति नहीं होने से उसको देख लूं, उसको देख लूं, वो देख लूं, वो संसार के पदार्थ देखने की कुतूहल वृत्ति सम्यक दृष्टि को नहीं रहती। क्यों? कि अपने स्वरूप को देखने का खिंचाव है उसमें, बाहर का खिंचाव नहीं होता वो। अंदर में महिमामंत स्वरूप को देखा है, बाहर में पदार्थ की महिमा नहीं है तो देखने का क्या, बाह्य पदार्थों की महिमा चली गई क्या देखने का, तो उसमें कुछ देखने का देखने लायक कुछ है नहीं। सम्यक दृष्टि को कुछ बाहर जाने का मन नहीं होता, वैसे ही कोई कार्य में कर्ता बुद्धि से जुटाने का भी मन नहीं होता, अंदर से स्वामित्व बुद्धि से बाहर जाने की इच्छा नहीं है, अंदर से स्वामित्व बुद्धि से बाहर जाने की इच्छा नहीं होती। स्वामित्व मैंने अपनापन करके अस्थिरता से जाने का होता है तो जाने का होता है, बाहर नहीं जाते ऐसी बात नहीं, अस्थिरता से जो होता है वो हो जाता है, कर्ता बुद्धि से कुछ होता नहीं है। मुनियों को तो सब छोड़ गया है, फिर मुनि की बात लेते हैं, तो मुनियों को तो सब प्रवृत्ति छूट गई, कोई संसार की प्रवृत्ति नहीं है और निवृत्तिमय परिणति विशेष है, निवृत्तिमय परिणति, बाहर की प्रवृत्ति छूट करके अपने अंदर की परिणति रहती है, बाहर की परिणति के कोई प्रवृत्ति नहीं है, उसको निवृत्ति कहते हैं। उसमें वे कभी थकते नहीं, अंतर परिणति करते करते कभी थकते नहीं, आपको ऐसा बोले कि चलते ही रहो तो थक जाओगे, बैठे ही रहो तो थक जाओगे, और सोते रहो तो भी थक जाओगे। इसलिए पलटना पड़ता है, सब बात में चलते चलते बैठ जाते हैं, बैठे बैठे सो जाते हैं, सोते सोते फिर उठ जाते हैं। लेकिन श्वासोश्वास लेते थक जाते हैं क्या? वो तो 24 घंटा चलता है, उसमें क्यों थकान नहीं लगती? अरे श्वासोश्वास बंद करे तो थकान लग जाए, चालू रहने में तो थकान रहने का होने का सवाल है ही नहीं। क्यों? कि ये देह की स्वाभाविक क्रिया है, उसका प्राण है श्वासोश्वास, उसमें थकावट नहीं लगे। लेकिन चलना बैठना सोना वो कोई शरीर का स्वाभाविक कार्य नहीं है, वो सब विभाविक कार्य है। तो विभाव में थकान लगती है, स्वभाव में थकान नहीं लगती है। तो मुनियों को भी अंतर कार्य में, अंदर के कार्य में थकान नहीं आती और बाहर जाने का मन भी नहीं होता, उपयोग को बाहर लंबाने का मन नहीं होता। बाहर नहीं, बाहर का उपयोग लंबाते नहीं हो, क्षण में अंदर में चले जाते हैं। मैं आत्मा में कैसे रह जाऊं, स्थिर हो जाऊं, क्या भावना है कि मैं आत्मा में ऐसा स्थिर हो जाऊं कि बाहर कभी निकलूं ही नहीं, ऐसे स्थिर हो जाऊं। मैं आत्मा में कैसे रह जाऊं, स्वानुभूति की दशा में से प्रतिक्षण बाहर आना पड़ता है, इसके बदले में अंतर में शाश्वत कैसे रह जाऊं, ऐसी भावना मुनियों को होती है। अपूर्व अवसर गाया कि नहीं गाया कृपाल जी, वो बहन श्री के वचनामृत में एक बोल है कि धन्य वो घड़ी है, धन्य वो दिन होगा और धन्य वो घड़ी होगी कि जिस दिन जिस घड़ी से अंतर में गए बाहर निकले ही नहीं, गए हो गए, वो डूब गए, गए तो गए, जाओ बाहर ही नहीं निकले, ऐसा धन्य दिवस और धन्य घड़ी कब आएगी कि अंदर में ही रह जाएंगे। ऐसी भावना मुनियों को होती है और सम्यक दृष्टि को भी होती है। उसमें ही उनको तृप्ति और आनंद है, अंदर में लीन होते हैं, उसमें आनंद है और उसमें तृप्ति भी है। प्रतिक्षण बाहर जाना पड़ता है, वैसे न जाने का हुए वैसी उनकी भावना रहती है। छठे गुणस्थान में आना पड़ता है, पुरुषार्थ की कमजोरी से आना पड़ता है, आने की इच्छा नहीं है, इच्छा विरुद्ध, अभिप्राय विरुद्ध। पंच महाव्रत का पालन करते हैं लेकिन अभिप्राय विरुद्ध और इच्छा विरुद्ध। आत्मा का स्थान छोड़ करके बाहर जाने का रुचता नहीं, बाहर जाना रुचता नहीं, आत्मा को छोड़ करके उपयोग बाहर जाए वो उनको रुचता नहीं है। सुगानी जी ने लिखा ना, जम का दूध लगता है, क्या लगता है? जम का दूध लगता है। अनंत आनंद और सुख का धाम, अनंत आनंद का धाम और अनंत सुख का धाम है। ऐसे आत्मा का बाग को छोड़ करके, वो आत्मा को बाग कहते थे, दूसरे कहीं भी बाहर जाने का मन होता नहीं। जैसे बाग में सुगंधित ठंडी हवा होती है, फुहारे होते हैं, वहीं रहने का मन हो जाता है, वैसे अंदर में अनंत गुण का बाग, अनंत गुण खिले हुए हैं, अनंत दिव्य गुण का बगीचा है, उसको छोड़कर बाहर जाने का मुनि को बिल्कुल गमता नहीं है। उसके पूरा समय आत्मा में ही पसार होता है, पूरा समय आत्मा में ही गुजरता है और सम्यक दृष्टि को नायक की धारा प्रकट है, पुरुषार्थ की दूरी चालू है। इसलिए उसका समय कैसे पसार, कैसे गुजरता होगा, वैसा प्रश्न ही रहता नहीं है। वो प्रश्न उनके स्वरूप को जो नहीं समझता है उसको होता है, उनके स्वरूप को समझने वाले को ऐसा प्रश्न होता नहीं है। यही मार्ग में, यही मार्ग से अनंत जीव, अनंत साधक मोक्ष में गए। यही उपाय से, यही रीति से परिणमन करके अनंत जीव में सब साधक थे, वो सभी साधक मोक्ष को प्राप्त हुए, इसी प्रकार मोक्ष में गए। ये बात 11 नंबर का प्रश्न का पूरा हुआ। अब प्रश्न उठाया है 12 नंबर का कि आप उपादान पर जोर ज्यादा देते हैं, जबकि श्रीमद् जी का पढ़ते हैं वचनामृत श्रीमद् जी के, तब वे निमित्त पर विशेष भजन देते हैं, ऐसा हमको लगता है, प्रश्न पूछने वाले को लगता है, वास्तव में क्या है, वो पूछने वाले की जिज्ञासा है। क्यों कि सभी ज्ञानी एक ही मार्ग में चलते हैं, अलग अलग मार्ग में कोई ज्ञानी चलते नहीं है। उदय हरेक का अलग होता है, भाषा हरेक के अलग होते हैं, बोलने की पद्धति अलग होती है, विकल्प अलग अलग होते हैं, लेकिन अंदर का मार्ग अंतर्मुख होने का तो एक सा होता है। अब बाह्य दृष्टि से देखें तो लगता है कि आप उपादान पद की बात ज्यादा करते हो, वो निमित्त की बात ज्यादा करते हैं, ऐसा लगता है। बात क्या है थोड़ा समझाइए, समाधान। ऐसा होता नहीं, क्या कहा कि श्रीमद् जी निमित्त पर जोर देते हैं और हम उपादान पर जोर देते हैं, ऐसा होता नहीं। वो भी उपादान पर ही जोर देते हैं, निमित्त के माध्यम से भी उपादान पर जोर देते हैं। जैसे कि किसी मुमुक्षु को ऐसा लगे कि मुझे अनजाने रास्ते पे चलने का है, मैं कहीं भटक नहीं जाऊं, गलत रास्ते पे नहीं भटक जाऊं, इसी कारण से मुझे ज्ञानी गुरु का सानिध्य चाहिए, तो वो निमित्त प्रधानता आई कि नहीं आई, कि उसका उपादान में वो विवेक हुआ कि मुझे ज्ञानी के पास जाना है, कि उपादान प्रधान बात है। ऐसा विवेक कोई उपादान में होता है और ये विवेक आत्मा का विवेक है, ज्ञानी के पास जाने का विवेक है, उसमें आत्मकल्याण का प्रयोजन, पारमार्थिक प्रयोजन शामिल है, इसलिए वो आत्मा का विवेक है। निमित्त का विवेक तो भूलने में आता है। तो बात तो एक सी होगी उपादान वाली, इसलिए कहते हैं ऐसा होता नहीं है। सबों का कहने का आशय एक ही है, सभी ज्ञानियों का कहने का आशय एक ही है, कोई अलग अलग उपदेश देते दिखता है ऐसा, वास्तव में ऐसा है नहीं। हाँ, आशय एक ही होता है, इरादा एक ही होता है, कहने का मर्म एक ही होता है, और उपदेश का केंद्र स्थान एक ही होता है कि आत्मकल्याण जैसे कैसे भी हो जाए। वो गुरु के पास गया, वही उपादान में विवेक आया तो गया ने, तो उपादान की मुख्यता कैसे नहीं हुई, कैसे नहीं हुई। मैं आत्मा की महिमा है, वो परमात्मा ने गुरुदेव ने बोला है सच्चे निमित्त की। हाँ, इसमें भी आएगा, आएगा भी बहुत आएगा, वो भी आएगा। प्रत्येक ज्ञानी को ऐसा ही कहना है कि तू करे तो होता है, पुरुषार्थ और कार्य तो तुम करेगा तो होएगा, तुम्हारा कार्य कोई दूसरा कर सकेगा नहीं है। कोई निमित्त तरफ से बात करते हैं, परंतु करने का अपने को ही है, भले ही निमित्त द्वारा समझाते हैं। कोई उपादान का सीधा बात करता है, कोई निमित्त द्वारा उपादान की बात करता है, लेकिन बात तो एक ही बात है, दो बात उसमें है। कोई ज्ञानी व्यवहार की ओर से बात करते हो, इसलिए यह व्यवहार का कहता है, और दूसरे ज्ञानी अध्यात्म का कहता है, ऐसा कहना चाहिए नहीं। ऐसे ज्ञानी ज्ञानी की बात में भेद पाड़ना ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा कहना नहीं चाहिए। देखो बहुत अच्छी बात क्या है, क्या कि व्यवहार से बात करता है, इसलिए वो तो व्यवहार की बात करते हैं, और ये अध्यात्म के निश्चय की बात करते हैं, इसलिए वो ज्ञानी अच्छे हैं, ऐसा है क्या? कि ज्ञानी तो सब ज्ञानी ही है। गुरुदेव तो वहां तक कहते थे कि एक ज्ञानी निवृत्त है तो शुभोपयोग में रहते हैं, शास्त्र स्वाध्याय पूजा भक्ति ज्ञान ध्यान में रहते हैं। दूसरा ज्ञानी कोई गृहस्थाश्रम में है और व्यापार व्यवसाय की प्रवृत्ति करते हैं, उसमें अशुभ उपयोग भी होता है, तो वो ज्ञानी बड़े ऊंचे हैं और ये ज्ञानी नीचे हैं, ऐसा भी है नहीं। ऐसा कहते थे कि ऐसा ऊंचा नीचापन ज्ञानी ज्ञानी में होते नहीं। वो बाह्य दृष्टि वाले का कार्य है, अंतर्दृष्टि से देखना चाहिए, बाह्य दृष्टि से देखना नहीं चाहिए, ऐसा कहते थे। हाँ शॉर्टकट में जाएगा तो ऐसा नहीं, ऐसा बोला नहीं, बोला बोलना ऐसा कहते हैं वो, तो व्यवहार का कहता है वो, अध्यात्म का कहता है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो कहवा ही नहीं एम कैसे, बोला ही नहीं वो अपना थे एम कैसे, क्योंकि उसमें किसी ज्ञानी की असाधना हो जाती है। मूल में बात वो है, एक मूल की बात समझना जैसे कि मुमुक्षु को ज्ञानियों के विषय में कोई टिप्पणी, कोई टीका, कोई जजमेंट लेना नहीं चाहिए। ऐसा करना वो अनधिकृत चेष्टा है, मुमुक्षु का वो अधिकार। आवरण करेगा, क्या करेगा, ज्ञानी की साधना करके अपने आत्मा को आवरण बढ़ाएगा, बड़ा रुष्म पड़ेगा, अभक्ति हो जाएगी, ज्ञानी की अभक्ति हो जाएगी। ये मेरा काम नहीं, मैं तो ज्ञानियों के चरण रज हूं, ज्ञानियों की चरण की रज हूं, बस मेरा काम नहीं है इनकी टीका टिप्पणी करना, जजमेंट लेना, वो मेरा काम नहीं, मेरा बूता ही नहीं है, और वास्तव में बूता है भी नहीं। लेकिन स्वच्छंद प्रवृत्ति से कहीं लोग ज्ञानियों के विषय में भी उल्टे सुलटे परिणाम कर लेते हैं, ये बड़े अपराधी होकर के अपने को बड़ा नुकसान करते हैं, ऐसा समझते हैं। बोला ही नहीं कैसे, तो ये ज्ञानी व्यवहार की बात करते हैं, वो ज्ञानी निश्चय की अध्यात्म की बात करते हैं, उनसे वो अच्छी बात करते हैं, इनसे वो अच्छी बात करते हैं, मुमुक्षु को ऐसा बोलना नहीं चाहिए। सबों का आशय एक ही होता है, सबों का आशय एक ही होता है, तुलनात्मक बुद्धि चाहिए, आशय की तुलना करने की बुद्धि चाहिए। सभी भावलिंगी मुनि मुक्ति के मार्ग में थे, भावलिंगी जितने भी मुनि थे वो तो मोक्ष मार्ग में विहार कर रहे थे, विचरते थे, कहाँ विचरते थे, मोक्ष के मार्ग में विचरते थे, मोक्ष तत्व है, सब भावलिंगी मुनि सब मोक्ष तत्व है, फिर भी कोई व्यवहार के शास्त्र की रचना करते हैं, अरे कथानुयोग भी लिखते हैं, रविशन आचार्य ने लिखा कि नहीं लिखा, पुराण लिखा है, व्यवहार के सार शास्त्र की रचना करते हैं, इसलिए कोई दूसरी बात कहते हैं ऐसा होता नहीं है, एक ही बात करते हैं, कोई दूसरी बात करते नहीं है। सबों का आशय एक ही होता है, एक ही तत्व बताते हैं, आखिर में सब निज परमात्मा तत्व को दर्शाते हैं। बारवा नंबर का प्रश्न पूरा हुआ, अब तेरवा प्रश्न है। प्रश्न किया आनंद के दिवस, आनंद का दिवस, आनंद का दिन, उसमें आपने जो लिखा है कि चैतन्य भगवान अपना निर्विकल्प स्वरूप में खेल रहे थे और रमणता कर रहे थे, यह वाक्य तो कोई गजब का है। क्या है कि अपने सम्यक दर्शन को प्रकट किया बेंचरी ने, शुद्धोपयोग हुआ, तो उस जब शुद्धोपयोग होता है, सम्यक दर्शन होता है, तो साथ साथ आनंद का परिणमन हो करके स्वरूप का आनंद का भी अनुभव होता है। तो पहले आनंद का दिन हुआ, आनंद का वो पहला दिन था, इसलिए उस विषय में उन्होंने वर्णन करते हुए लिखा आनंद के दिन ऐसे। उसी दिन के वर्णन में आपने लिखा कि चैतन्य भगवान, मैंने मेरा चैतन्य भगवान अपना निर्विकल्प स्वरूप में खेलते थे। शैली बहुत अच्छी है, वो लिखने की शैली बहुत अच्छी है। वो खुद देख रहे थे, क्या देख रहे थे कि चैतन्य भगवान खेलकूद करते हैं, आनंद में खेली करते हैं, ऐसा देख वो देखते थे अपने चैतन्य भगवान को। और जिसने प्रश्न पूछा है उसको लगा कि बहुत बढ़िया वचन लिखा है, समाधान देते हैं कि वस्तु पर दृष्टि स्थापने से पर्याय में आत्मा खेलता हुआ प्रकट होता है। जहां श्रद्धा या दृष्टि अपने स्वरूप पर स्थापित हुई कि आत्मा अपनी पर्याय में खेलता हुआ नजर आता है। लिखने की पद्धति बहुत सुंदर है, दृष्टि आत्मा पर चली गई, अनंत गुण सर्व गुणांश तो सम्यक हो, अनंत गुण परिणमन करने लग गए स्वाभाविक तौर से। तो कहते हैं कि आत्मा खेलता है, आत्मा खेलता है, अपने परिणमन में आत्मा खेलता हुआ देख नजर आता है। कब? के दृष्टि स्वरूप पर गई तब। आनंद गुण का सागर आत्मा है, कोई जुदाई तत्व है, अद्भुत है, चमत्कारिक है, महिमा करते हैं। आनंद गुण का सागर आत्मा है, कोई गजब का, अजब गजब का तत्व है, चमत्कारिक तत्व है, अद्भुत तत्व है। अद्भुतात अद्भुतम, अद्भुत से भी अद्भुत है। स्वानुभूति में विचार करना नहीं पड़ता, या याद करना नहीं पड़ता, याद करना मैंने रटन कर सके याद करें, उसको कहते हैं गोखना हिंदी में, मालूम नहीं क्या कहते हैं हिंदी में, हैं रटना, और रटन करके स्मृति में रह जाना, स्मृति में रहने के लिए रटना, उसको आप गुजराती में कहते हैं गोखू पड़तो नहीं। अपने स्वभाव में ही खेलता हुआ प्रकट होता है सहानुभूति में, सहानुभूति में खेलता है, अपने स्वभाव में खेलता है, क्योंकि यह उसका स्वभाव ही है, ऐसा परिणमन होना उसका स्वभाव है। उसका रम्य, मैंने रमता स्वभाव है, रम्य मैंने सुंदर, रम्य मैंने सुंदर, सुंदर स्वभाव है आत्मा, बड़ा सुंदर है। विकल्प छूटते ही सहज प्रकट होता है, विकल्प बंद हो गया उत्पन्न होने का, विकल्प छूट गया सहज प्रकट होता है, ऐसा ही उसका स्वभाव है। निर्विकल्प परिणमन में विकल्प छूट गया, बस ऐसा ही परिणमन करने का उसका सहज स्वभाव है। अनंत गुण पर्याय में रमना खेलना, यही आत्मा का सहज स्वभाव है। अनंत गुण परिणम गुण पर्याय में रमणता करना, खेलना, लीन होना, जम जाना, यही इसका स्वभाव है। मूल वस्तु अपने आप रह करके, अपने स्वरूप में रह करके, अपने रूप रह करके, अपने गुण पर्याय में खेलती है। वस्तु वैसे की वैसे रह करके परिणमन में खेलती है और यही उसका स्वभाव है और वही इसका स्वरूप है। मूल स्वरूप है, वैसा का वैसा रहता है, परिणमन में अलग 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 परिणमन होता है, अनेक प्रकार का। तो चैतन्य का खेल है, जैसे सोना सोना ही रहता है, घाट कितना भी करो, आभूषण अनेक प्रकार के डिजाइन के करो, सब में सोना सोना ही रहता है। ये बहुत अच्छी डिजाइन है तो बहुत सुंदर सोना है, ऐसा है, सोना तो सोना ही है, सोने की शोभा सोना से है। डिजाइन से होती तो नकली डिजाइन में भी तो नकली कर लेते हैं लोग, लेकिन सोना है, उसकी शोभा अपने सोनापने से ही है। ऐसे ही आत्मा जो है वो तो मूल स्वरूप से वैसा का वैसा रह करके अपने अनंत गुण पर्याय में रमणता करता है, खेलता है, लीन होता है और यही इसका स्वभाव है, वही इसकी सुंदरता है, यही इसकी शोभा है। ऐसे 13 नंबर का प्रश्न यहाँ समाप्त होता है, आगे का विषय करते हैं।